तारीख 28 जनवरी दिन मंगलवार, दिन भर में स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। दिल्ली चुनाव के बहाने शाहीन बाग पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान।
दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा, ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे।
जानेंगे आपत्तिजनक बयानों का क्या है उद्देश्य। देशद्रोह के मामले में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम गिरफ्तार। साथ ही सुनेंगे बीबीसी हिंदी रेडियो के पूर्व सहयोगियों के संस्मरण।
बदन में झुरझुरी दौड़ा देने वाला उदाहरण तो वो था जब आंध्र के एक दूर दराज गाँव में एक अंधे व्यक्ति ने मेरी आवाज सुनकर मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या आप उमर फारूक हैं?
होगी वसतुल्लाह खां की डायरी भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। दिल्ली चुनाव में विवादास्पद बयान देने की कड़ी में अब बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का नाम भी जुड़ गया है। परवेश वर्मा ने एक चुनावी सभा के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर कहा कि दिल्ली वालों को सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा, ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, इसलिए आज समय है, कल मोदी जी और अमित शाह जी बचाने नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद शाहीन बाग में एक आदमी दिखाई नहीं देगा। परवेश वर्मा के इन बयानों की आलोचना हो रही है। निर्भया मामले में दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। मुकेश सिंह ने दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की थी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को दोषी ठहराया गया था। इन चारों को 1 फरवरी को फांसी दी जानी है। इन चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन उस समय एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित थी, जिसे बाद में राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स की परेड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवा शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में है। देश की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि पड़ोसी देश को हराने में हमें 10 दिन भी नहीं लगेंगे, वह प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। क्या हम अपने युवाओं को ऐसा देश सौंप सकते हैं जहाँ आतंकवाद की समस्या है? इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए नागरिकता कानून का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ पार्टियों को अपने वोट बैंक की चिंता है।
भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते?
ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और कड़े उपायों की घोषणा की है। इसके तहत 30 जनवरी से चीन और हांगकांग के बीच हाई स्पीड रेल संपर्क काट दिया जाएगा और फेरी सुविधा भी निलंबित कर दी जाएगी। इसके अलावा फ्लाइट्स की संख्या को भी आधा कर दिया जाएगा। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा, हांगकांग से चीन आने जाने के लिए परिवहन सुविधा की जरूरत है, इसलिए हम समुद्र, जमीन और हवाई सेवाओं में फिलहाल सिर्फ कमी कर रहे हैं। सबसे पहले वेस्ट काउलून हाई स्पीड रेल स्टेशन और हंगहोम में सभी इंटरसिटी ट्रेन को निलंबित किया जाएगा। ये थे हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम के शब्द। जर्मनी और जापान में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। ये मामले उन लोगों में मिले हैं जो चीन गए ही नहीं थे। चीन ने अपने नागरिकों को इस वायरस पर नियंत्रण होने तक देश के बाहर यात्रा न करने की हिदायत दी है। वहीं रूस ने चीन से लगी अपनी ज्यादातर सीमाएं बंद कर दी हैं। ब्रिटेन की सरकार ने चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को अपने 5G नेटवर्क के विकास के लिए सीमित भूमिका निभाने की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन ये संवेदनशील इलाकों से बाहर रहेगा जिसमें सैन्य ठिकाने और महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं। हुआवे ने ब्रिटेन के फैसले का स्वागत किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के विवादित बयान के बाद पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का एक विवादित बयान आया है। उन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कश्मीर जैसी स्थिति का सामना करेगी और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी घरों में घुसेंगे और महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे। सुनिए उन्होंने और क्या कहा।
दिल्ली की जनता जानती है जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ था, उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही, आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है। वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने।
बीजेपी सांसद के बयान के बाद उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संज्ञान लेने को कहा। राज बब्बर ने कहा,
देखिए बीजेपी प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मन की बात में प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं और जब इस तरह के उनके सांसद या उनके मंत्री जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि कहीं उनकी मूक सहमति तो नहीं।
दिल्ली में चुनाव प्रचार खूब जोरों पर है। आम आदमी पार्टी अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। इसके साथ ही विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। इन सब के क्या मायने हैं, यही जानने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से बात की।
दो अलग अलग बातें हैं, एक तो ये दिल्ली के इलेक्शन के सिलसिले में बात है सारी जो आप बयान वगैरह देख रहे हैं, और दूसरे ये जो जनरल एटमॉस्फेयर है देश की राजनीति का उससे भी जुड़ा हुआ है। मतलब मेरा ख्याल है बयान जो है आपके ये सीएए को लेकर के और जो ये बयान आए हैं जो शर्जील इमाम और ये सब बातें आप अगर उनके सिलसिले में बात करें तो मुझे लगता है ये तो फिलहाल इलेक्शन तक तो दिल्ली के ये रहेंगी सब तरह की चीजें।
जी, तो आप किस तरीके से देख पाते हैं, क्या ये बीजेपी को एक तरीके से क्या लाभ पहुंचा सकती हैं, या ये बयान इसलिए दिए जाते हैं कि इससे कहीं ना कहीं एक फायदा जरूर पहुंचेगा?
हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, इसका तो देख ही यही होता है कि क्योंकि देखिए पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन किसी भी तरीके से हो, इस तरीके से हो या उस तरीके से हो, फायदा बीजेपी उसका लेना चाहेगी और बीजेपी को आखिरकार उसी से लाभ मिलता है हमेशा चुनाव के पहले, खास तौर से अगर कोई होते हैं तो।
जी, और उधर जो दिल्ली में अभी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है वो तो अपना जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है वो अपने काम पे कर रही है। उसका कहना है कि उसने ऐसा काम किया है, दिल्ली में स्कूल दिए हैं, साथ ही उसने सस्ती बिजली दी है, और अपने उन कामों के आधार पर मान रही है। तो क्या जनता इन बयानों से इतना प्रेरित हो जाती है कि वो उस तरफ जाएगी जहां पर बयानबाजियों से एक तरफ लोगों को आकर्षित किया जा रहा हो?
देखिए एक चीज है, जैसे दो विपरीत बातें बनती है, जैसे काम और काम के बदले में काम नहीं होना, ये दो अपोजिट्स होते हैं। ऐसे ही ये जो राष्ट्रवाद या कहिए देशभक्ति या जो इस तरह की विचार है उसका अपोजिट होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता और जिसमें भाईचारा, जिसमें सबके बीच में समरसता वगैरह वगैरह बातें हों। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि अपोजिट्स की लड़ाई नहीं होती। एक तरह का जो वोट बैंक हमारे देश में तैयार हुआ है जिसमें देशभक्ति कहिए या जो भी कथित रूप से राष्ट्रवाद या जो एक प्रकार का उग्रवाद है, तो वो जैसे ही अगर आप कोई ऐसा मौका आएगा जिस वक्त पर भावनाओं की खेती होने लगेगी तो उस वक्त ये जो बातें हैं ना काम और ये सब भी किनारे हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चुनाव में होंगे या नहीं होंगे, ये तो अब दिल्ली के वोटर को देखने को पता लगेगा कि उसकी क्या दिलचस्पी है। लेकिन आप देखिए कल आज जो वो भी दिखाई पड़ने लगे हैं, वो स्टिंग ऑपरेशंस भी आए हैं कि शिक्षा में वास्तव में वो काम नहीं हुआ है जैसा कहा जा रहा है, स्कूलों की वास्तव में वो दशा नहीं है। तो दोनों तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन है बेसिकली बात तो वही कि ये दिल्ली के चुनाव के पहले का एक माहौल है जिसमें जिसके की मुझे पहले से अंदेशा था कि ये, और अभी तो एक हफ्ता और है कम से कम, आप देखिए अभी क्या क्या चीजें सामने आती हैं, पर ये हमेशा अंदेशा रहता है हमारे भारत में, और पिछले कम से कम कुछ साल का अनुभव तो यही है कि चुनाव के पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि फिर परिणाम पर असर डालता है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। आपत्तिजनक बयानों के बीच नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में अपने विवादित भाषण को लेकर चर्चा में आए जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को आज गिरफ्तार कर लिया गया। शर्जील पर देशद्रोह के आरोप में असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मामले दर्ज किए गए थे। शर्जील को बिहार के जहानाबाद में गिरफ्तार किया गया। वहां हमारे सहयोगी नीरज प्रियदर्शी मौजूद थे, मैंने उनसे बात की।
शर्जील इमाम की गिरफ्तारी की बात जहां तक है तो शर्जील इमाम को पुलिस के हिसाब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि शर्जील अपने दोस्तों के साथ जो कि दिल्ली से आए थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को बुलाकर खुद ही अपने घर के पास सरेंडर किया है। शर्जील को पुलिस उठाकर उनके घर से काकू के जहानाबाद के काकू थाना में ले गई। वहां करीब दो घंटे तक, तीन घंटे तक शर्जील, उनके भाई मुजम्मिल, जिन्हें की आज सुबह ही पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद ही घर वालों पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ था और ऐसी चर्चा होने लगी थी कि शर्जील कहीं ना कहीं सरेंडर कर सकते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, शर्जील ने सरेंडर किया और उसके बाद फिर पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेकर काकू थाना ले गई। वहां बहुत देर तक उनके थाने में पूछताछ की गई, फिर उसके बाद वहां कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा।
ये बताइए हमको नीरज के उनके खिलाफ असम में भी मामला दर्ज हुआ, दिल्ली में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, तो ये दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है किस विभाग ने की है, और अगर वो सरेंडर कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस पहले से कैसे पहुंची हुई थी?
शर्जील के घर वालों का कहना है कि जब सुबह मुजम्मिल, उनके भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद शर्जील के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसलिए शर्जील चाहते थे कि उनके परिवार वालों को लोग टॉर्चर ना करें। तो उनके घर वालों से जो बातचीत हमारी हो रही थी उसमें वो लोग कह रहे थे कि पुलिस रात रात को 12 बजे 2 बजे उनके घर आ रही है, उठा के लोगों का ले जा रही है। जो लोग आसपास के घरों में रहते हैं उनके घरों में भी पूछताछ चल रही है रात को महिलाओं से, लड़कियों से, ऐसा वहां के लोगों का आरोप था और इसके बाद ही शर्जील को सरेंडर करना पड़ा, ऐसा लोग कह रहे हैं। जहां तक बात मामले की है तो घर वालों का कहना है कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम को शर्जील ने खुद ही सूचना दी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पिछले 4 दिनों से बिहार में कैंप कर रही है। जैसा कि पहले भी खबरों में लिखा जा चुका है कि अलीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की 3 टीमें मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी और उसके तहत ये गिरफ्तारी या फिर जो सरेंडर हुआ है।
शर्जील इमाम जहानाबाद में गिरफ्तार, अधिक जानकारी दे रहे थे नीरज प्रियदर्शी। अब रुख करते हैं जयपुर का, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज युवा आक्रोश नामक रैली की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 1 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का यह पहला बड़ा कार्यक्रम था। इस रैली में गांधी ने खुद को छात्र युवाओं से जोड़ने का प्रयास किया और ऐसे मुद्दे उठाए जो रोजगार से जुड़े थे। वे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खासा आक्रामक थे। राहुल रैली में नौजवानों से मुखातिब हुए और कहा,
नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, पिछले साल 1 करोड़ युवाओं ने इस देश में रोजगार खोया है। और जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं लंबे लंबे भाषण देते हैं, NRC की बात होगी, CAA की बात होगी, NPR की बात होगी, मगर जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इस देश के हर परिवार को चुभती है, युवाओं को जो दुख होता है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी और आज GDP नए तरीके से नापे जाती है तब 5% ग्रोथ है, अगर आप पुराने तरीके से नापे तो 2.5% ग्रोथ रेट है।
इस रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट भी उनके साथ थे। नागरिकता कानून के पक्ष विपक्ष में बहती मुद्दों के बयार के बीच राहुल गांधी ने अपने भाषण को बेरोजगारों और किसानों पर केंद्रित रखा। इस पर BJP अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं,
CAA NRC इस मामले में महामहिम के श्रीमुख से कुछ नहीं कहा गया और जो कहा वो असत्य कहा गया।
राहुल गांधी ने रैली में आरोप लगाया कि देश में भाईचारे के माहौल को खराब किया जा रहा है, इससे भारत की प्रतिष्ठा को आघात लगा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के 15 चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी की इस रैली को सियासी पंडित कांग्रेस की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद छोड़ दिया था। अब प्रेक्षक कहते हैं यह रैली उनकी फिर से ताजपोशी की ओर बढ़ने का संकेत है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया कहते हैं,
राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष बने थे, तब जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और उसी में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो एक उस तरह का कनेक्शन भी जयपुर से राहुल गांधी का है। यदि वो वापस से पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने की तैयारी के लिए, इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जयपुर को ही चुना है।
यह मैच इत्तेफाक है कि 7 साल पहले जयपुर में ही पार्टी शिविर में राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। अब फिर सियासी फलक पर उनके नए सिरे से अवतरण की बात कही जा रही है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि 31 जनवरी को प्रसारित होने वाला दिन भर BBC हिंदी रेडियो का अंतिम कार्यक्रम होगा। इसी कड़ी में हम आपको BBC हिंदी रेडियो के पूर्व और वर्तमान प्रसारकों और संवाददाताओं के संस्मरण सुना रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले सुनिए BBC हिंदी से जुड़ी रहीं और वर्तमान में इंडियन एक्सप्रेस अखबार की वरिष्ठ संपादक सीमा चिश्ती को।
नमस्कार, मैं सीमा चिश्ती। एक दशक से ज़्यादा समय पहले आपसे लगातार बात होती थी, लेकिन अब BBC रेडियो की जो कार्यक्रम है वो अब ख़त्म होने वाले हैं। ये एक अच्छा अवसर है इस पर विचार करने का कि जब हम लोग BBC में, मैं और मेरे कुछ साथी जब BBC में थे तो हम लोग क्या काम करते थे। वो बहुत ही एक एक्साइटिंग दौर था भारत में राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। और अब जब मैं देखती हूँ 1994, 95, 96 वाला जो दशक था, उसमें कितनी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई, परिवर्तन आए जो अभी भी समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। और BBC रेडियो में रहकर भारत को, परिप्रेक्ष्य को, इस पूरे क्षेत्र को और पूरी दुनिया में हो रहे तेजी से आ रहे परिवर्तनों को समझने का मौका मिला। एक दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए कि रेडियो एक माध्यम के रूप में कभी पनप न पाया। टेलीविजन में बूम हुई, सैटेलाइट बूम हुई पूरी, प्रिंट बढ़ा, मैगजीन्स आईं और अब डिजिटल बूम रही। लेकिन रेडियो, जो कि शायद सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे बारीक माध्यम है, सबसे टिकाऊ और अजीबोगरीब हालात में भी, भूकंप आ जाए, तमाम और चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन रेडियो सिग्नल पे आप अपनी बात कह सकते हैं, इतना प्रभावी मीडियम वो कभी ठीक रूप से बढ़ नहीं पाया। लेकिन BBC हिंदी ने पूरा मौका दिया उसमें काम करने वाले सभी लोगों को कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसको स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से और गंभीरता से पूरी उन चीज़ों पर अपनी नज़र दौड़ाई जा सके, उस पर काम किया जा सके और उससे अपने श्रोताओं से शेयर किया जा सके। BBC हिंदी रेडियो के बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में तो साथी बता ही चुके हैं। मैं उस विशेष टीम के लिए नियुक्त की गई थी, हम लोग 4 थे, मधुकर, कुर्बान, संजीव और मैं, जो कि भारत में BBC का जो साउथ एशिया दिल्ली का ऑफिस था उसको सेटअप करने के लिए नियुक्त किए गए थे। और पहले हम लोग लंदन ले जाए गए, उसके बाद फिर ट्रेन करके हमें, और कुछ साल बिताने के बाद हम फिर दिल्ली आए जहाँ पे हमने कार्यालय स्थापित किया श्री मार्क टली के BBC छोड़ जाने के बाद। तो एक बड़ा अच्छा, बिल्कुल पारिवारिक सा रिश्ता था हम लोगों का BBC से। टेक्नोलॉजी जो थी वो पूरी एनालॉग वाली, टेप वाली, जो कटता था टेप ब्लेड से और सेलो टेप से चिपकता था, उससे लेकर कंप्यूटर तक का पूरा हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा। ऑनलाइन के आते, जिस तरह से श्रोताओं की जो उम्मीद थी ब्रॉडकास्ट से और प्रसारण से, वो जिस प्रकार बदली, उसको भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया और उस पूरे परिवर्तन का भी हम लोग हिस्सा थे। सीमा चिश्ती, BBC दिल्ली।
ये थी इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ संपादक सीमा चिश्ती। और अब अगली आवाज़ उस शख्स की है जिसको हमारे पुराने श्रोता अच्छे से पहचानते होंगे। BBC के ये पूर्व संवाददाता हैदराबाद से रिपोर्टिंग किया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उमर फारूक की। सुनिए वो क्या कहते हैं।
शॉर्टवेव पर BBC हिंदी सेवा के प्रसारण बंद होने की घोषणा के साथ ही मेरी उन 18 वर्षों की यादें ताज़ा हो गईं जो मैंने विश्व की सबसे बेहतरीन मीडिया संस्था के साथ गुजारे। BBC के साथ मेरा सफ़र 1995 में हैदराबाद स्थित एक स्ट्रिंगर के रूप में और फिर दक्षिणी भारत संवाददाता के बतौर शुरू हुआ था। ये एक तरह से मेरे लड़कपन का सपना साकार होने जैसा था।
और जब अखबार में छपे एक छोटे से विज्ञापन ने बीबीसी की अनूठी दुनिया का दरवाजा मेरे लिए खोला तो ये एक अविश्वसनीय अनुभव था। उस जमाने में रेडियो पर अचला शर्मा, मधुकर उपाध्याय, परवेज आलम, सीमा चिश्ती, शिवकांत, विजय राणा और ऐसे ही कई दूसरे दिग्गजों की आवाजें सुनते थे। उन्हीं के साथ काम सीखने और करने का अवसर एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। जहां तक उन 18 वर्षों के दौरान होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं का सवाल है तो ये एक कभी समाप्त न होने वाला सिलसिला है। 1995 में एनटी रामाराव का तख्ता पलट और चंद्रबाबू नायडू दौर की शुरुआत से लेकर 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु तक होने वाली राजनीतिक उथल पुथल हो या फिर एक अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन से लेकर तेलंगाना राज्य की स्थापना तक, 2003 में पाकिस्तान यात्रा और वहां के लोगों की सामाजिक जीवन शैली, कल्चर और संस्कृति पर एक रेडियो सीरीज भी मेरे लिए यादगार रही। ये बीबीसी का नाम ही था जिसने एक पत्रकार के रूप में लोकप्रियता दिलाई और एक पहचान बनाने का अवसर दिया। इसका बदन में झुरझुरी दौड़ा देने वाला उदाहरण तो वो था जब आंध्र के एक दूर दराज गाँव में एक अंधे व्यक्ति ने मेरी आवाज सुनकर मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या आप उमर फारूक हैं? इस तरह का अनुभव शायद कहीं और संभव हो ही नहीं सकता था। खराब टेलीफोन लाइनों के जमाने में जबकि संचार साधन उतने आधुनिक नहीं थे, रिपोर्ट रिकॉर्ड करवाने की अपनी एक चुनौती होती थी। पता नहीं कि मेरी आवाज रेडियो के माध्यम से किस हद तक लोगों के पास पहुंची, लेकिन उस बहाने पड़ोसी के मूर्ख की आवाज से तो सारी दुनिया परिचित हो गई थी और अक्सर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने वाले साथियों को कहना पड़ता था, प्लीज अपने मूर्ख को खामोश बिठाइए, और जब भी रिपोर्टिंग होती थी तभी वो और ज्यादा जोर से आवाज निकाला करता था। बहरहाल अब भी बीबीसी हिंदी डिजिटल रूप में हम सब के साथ रहेगा और इसके इस नए रूप के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए। उमर फारूक, बीबीसी हैदराबाद।
ये थे बीबीसी हिंदी के पूर्व संवाददाता उमर फारूक और अब सुनेंगे बीबीसी के वर्तमान संवाददाता का संस्मरण। बीबीसी हिंदी के ये संवाददाता नक्सल प्रभावित राज्यों में अपनी खास रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सलमान रावी की, जो कई वर्षों से बीबीसी हिंदी के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
बीबीसी हिंदी के रेडियो प्रसारण से एक दशक से भी ज़्यादा से जुड़े रहने का सफ़र बहुत यादगार रहा। ख़ास तौर पर मैंने उन इलाकों में ज़्यादा काम किया जो दुर्गम हैं, जहाँ पर जाया नहीं जा सकता। रेडियो के कारवां से मैं तब जुड़ा जो पूर्वी भारत में हुआ करता था। इस सफ़र के कई यादगार लम्हे ऐसे भी हैं जिन्हें मैं कभी भुला नहीं सकता। बात करता हूँ वर्ष 2008 की, जब मैं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनावों को कवर करने बस्तर के दंतेवाड़ा पहुँचा था। उस समय दंतेवाड़ा तक की सड़क नहीं थी क्योंकि ये इलाका सुरक्षा बलों और माओवादी छापामारों के बीच चल रहे संघर्ष का दंश झेल रहा था। मतदान का दिन था और सुबह की सभा मोहनलाल शर्मा साहब प्रस्तुत कर रहे थे। उस खौफ के साए में जैसे ही स्टूडियो से मैं कनेक्ट हुआ तो मेरे पीछे से मुर्गे की बांक ने मानो पूरे माहौल को उम्मीद से भर दिया। शायद ये पहला मौका था जब बीबीसी हिंदी के किसी भी रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुर्गे की बांक से की गई हो। अपने सफ़र पर जब मैं पलटकर देखता हूँ तो अनगिनत यादगार लम्हे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कल ही की तो बात थी। वर्ष 2007 की बात है जब मैं ओडिशा के कालाहांडी गया हुआ था। खबर आई थी कि सुदूर जंगलों में रहने वाले कई आदिवासियों की मौतें हैजा से हुई थीं। तेज बरसात के मौसम में थुआमुल रामपुर प्रखंड से लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता तय करने में हालत खराब हो गई थी। तो लोगों से बात करके ये तो समझ में आया, इन लोगों को पिछले 3 महीनों से अनाज के दर्शन भी नहीं हुए थे। पता चला कि ये मौतें बीमारी से नहीं बल्कि भूख से हुई थी। जब बीबीसी पर रिपोर्टों का सिलसिला शुरू हुआ तो मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि उस वक्त लंदन की बजाय भवानीपटना से शाम की दोनों सभाओं का प्रसारण किया गया था, जो पूरी तरह से कालाहांडी पर केंद्रित रहा। मेरे लिए रेडियो की खबरों की दुनिया हमेशा से ही अलग ही रही। ये उन लोगों के लिए और उन लोगों के बारे में रही जिनकी आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया में गौन रहती है। सुदूर इलाकों से रेडियो के लिए काम करते हुए ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना तो ट्रेन देखी, ना बस या फिर टीवी। ऐसे लोगों को बाकी की दुनिया से जोड़ने का सिर्फ एकमात्र जरिया रेडियो ही रहा। अब शॉर्ट वेव से विदाई लेते हुए मन भारी है, मगर इतना इत्मीनान है कि रेडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेगा। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ये थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी, जो बीबीसी हिंदी रेडियो पर अपने संस्मरण को साझा कर रहे थे। और अब समय है इस्लामाबाद से आई उसतुल्लाह खां की डायरी को सुनने का।
समय के साथ साथ करप्शन के माने भी बदल गए हैं। जब पश्चिमी देशों से इस तरह की खबरें आती हैं कि फलाने प्रधानमंत्री से पुलिस पूछताछ कर रही है कि इस बार उन्होंने अफ्रीका में जो हॉलीडे गुजारी उसके पैसे उन्होंने किसने दिए, या फलां देश की यात्रा के दौरान उन्हें जो हीरे की अंगूठी तोहफे में मिली वो उन्होंने सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय अपने पास क्यों रख ली, या फलां ठेका जब दिया जा रहा था तो प्रधानमंत्री ऑफिस से एक सिफारशी फ़ोन क्यों गया। ये वो आरोप हैं जिन पर सरकारें टूट जाती हैं, वजीर जेल चले जाते हैं या फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए रिटायर हो जाते हैं। मगर हमारे देशों में सुई के नाके से करप्शन का हाथी भी निकल जाए तो माथे पे शिकन नहीं आती। हालांकि कल ही की तो बात है कि हमारे नेताओं की पिछली पीढ़ी कितनी एहतियात से काम लेती थी कि कहीं शेरवानी या दुपट्टे पे छींट आना पड़ जाए। मसलन मोहतरमा फातिमा जिन्ना हमेशा अपने और गवर्नर जनरल भाई मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सरकारी बजट से छोटे साइज की डबल रोटी मंगवाती थी क्योंकि बड़ी डबल रोटी ज़ाया हो जाती थी। फील्ड मार्शल अयूब खान के बारे में आपकी भले कोई राय हो लेकिन राष्ट्रपति भवन में उन्होंने अपने परिवार पे होने वाले खर्चे और सरकारी खर्चे के अलग अलग बही खाते रखे हुए थे ताकि सरकारी और निजी खर्चा मिक्सअप ना हो जाए। 2010 में तुर्क फर्स्ट लेडी ने पाकिस्तान में आने वाली बाढ़ के पीड़ितों की इमदाद के लिए एक कीमती हार पाकिस्तान के सरकारी फंड को दान किया। 5 बरस बाद जब हार की ढूंढियां मची तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने बताया कि वो हार तो मेरे परिवार ने हिफाजत से रखा हुआ है, तुर्क फर्स्ट लेडी मेरी बहन है। नवंबर 2016 में भूतपूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ ने धड़ल्ले से बताया कि 2009 में सऊदी अरब के बादशाह और मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला ने मुझे लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए एक भारी रकम दी। मिस्टर क्लीन इमरान खान को देश का खजाना बचाने का इतना शौक है कि वह ज़रूरी सरकारी खर्चे भी खजाने की बजाय दोस्तों पर डालना पसंद फरमाते हैं। इत्तफाक से भगवान ने खान साहब को दोस्त भी ऐसे मलंग दिए हैं जिन्हें सिवाय देश सेवा के कोई लालच नहीं। मसलन शुगर किंग जहांगीर तरीन का प्राइवेट विमान नए पाकिस्तान की सेवा के लिए कई वर्ष से वक्फ है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेविस में बड़े फख्र से बताया कि वो तो कभी सरकारी खर्चे पे इतने महंगी यात्रा पे ना आते मगर मेरे दोस्तों ने मेहरबानी की और मेरा खर्चा बर्दाश्त कर लिया। इनमें से एक दोस्त हैं इकराम सहगल जिनकी पाकिस्तान में पाथ फाइंडर नामी सिक्योरिटी कंपनी है और दूसरी मार्टन डॉन नामी मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी है। ये दोनों कंपनियां 2002 से डेविस में पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रही हैं। इसके बदले दोनों कंपनियों ने आज तक किसी हुकूमत से टके का फायदा हासिल नहीं किया। एक और मुखलिस पाकिस्तानी टाइकून मलिक रियाज हैं, उन्हें पाकिस्तान में लैंड डेवलपमेंट का किंग कहा जाता है। उनकी दौलत, उनका विमान, ईमान और हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के लिए वक्फ हैं। किसी बेघर सियासतदान, अफसर, जज, जर्नल को कोई भी रिहायशी या गैर रिहायशी मुश्किल हो, मलिक साहब हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के कहते हैं मैं हूं ना। कौन कहता है पाकिस्तान को दोस्तों की कमी है, अंदर भी और बाहर भी।
वसतुल्लाह खां की डायरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखें। अब जानते हैं खेल की खबरें। इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में जारी अंडर-19 विश्व कप का क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू हो चुका है। पोचेफस्ट्रूम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। भारत ने 9 विकेट खोकर 233 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 62 रन बनाए हैं और इस समय ऑस्ट्रेलिया अभी 5 विकेट खोकर 105 रन पर खेल रही है। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए उसकी कश्मीर से तुलना की है। निर्भया मामले में दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स की परेड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवा शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में है। देश की 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की है। हांगकांग ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और कड़े उपायों की घोषणा की है। इसके तहत 30 जनवरी से चीन और हांगकांग के बीच हाई स्पीड रेल संपर्क काट दिया जाएगा और फेरी सुविधा भी निलंबित कर दी जाएगी। बीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने, फेसबुक लाइव में तकनीकी सहयोग दिया विकास त्रिवेदी ने। कल शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। तब तक आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com का पन्ना। सभी सहयोगियों के साथ अंतिम बार मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।